मेरे आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 6 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं सहकारी बैंकों में सुधार इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरी घटनाओं के बारे में बात करूं, अपने ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा संबोधित करना चाहूंगा। तो स्पेशली जो स्टूडेंट अभी 15 मार्च से शुरू होने वाली क्लासेस में आने वाले हैं, वो थोड़ा सा इसे ध्यान से सुन लें। फ्रेंड्स, आप सब जो क्लासेस में आने वाले हैं, लगातार मेल के जरिए मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप क्या क्या पढ़कर आए। बस केवल इसी विषय पर मैं थोड़ी सी बातें आपसे करने जा रहा हूं। देखिए, जो 15 दिन की क्लासेस हैं, इसका आप उद्देश्य बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपको लगता है, दूसरों को भी लगता है कि वो जानते हैं कि उन्हें पढ़ना कैसे चाहिए, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आप जानते हैं कि पढ़ना कैसे चाहिए, तभी तो आप अभी तक पढ़ रहे हैं और आपने क्लासेस आगे भी पढ़ाई की है और क्लासेस पास की हैं, आगे भी आप पढ़ाई करेंगे और आपके पास डिग्री है, तो पढ़ना आप जानते हैं। लेकिन मित्रों, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो स्वाभाविक तौर पर तो हम जानते हैं, लेकिन उसकी वैज्ञानिकता को नहीं समझ पाते, या उस जानने में अगर हम और व्यवस्थित तरीके से जानने को शामिल कर लें तो हमारा जानना बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात आती है तो ये कठिन ही इस मायने में है कि इसकी पढ़ाई थोड़ी से अलग ढंग से करनी पड़ती है। सामान्य तरीके की पढ़ाई सिविल सर्विस को बहुत कठिन, या यूं कह लीजिए कि लगभग एक असंभव सा टारगेट बना देती है। तो ये जो क्लासेस हो रही हैं, इस क्लासेस में हम लोगों की कोशिश होगी आपके साथ मिलकर कि आपको ये बताया जाए कि सिविल सर्विस की तैयारी की कैसे जाती है, आप पढ़ाई कैसे करेंगे। एक एक टॉपिक हम कुछ उदाहरण लेकर के प्रैक्टिकल करके यहाँ कोशिश करेंगे बताने की, आप सबके साथ मिलकर कि आपको कैसे किसी विषय को पढ़ना चाहिए, जिस और वो जो विषय हैं जो आपके सिविल सर्विस के बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स है, आपकी ज्योग्राफी है, आपके हिस्ट्री है, कुछ इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस है, इन विषयों को आप कैसे पढ़ेंगे, फिर आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो इन सभी पर हम लोग यहाँ बातें करेंगे। अब जब आप यहां यही सब सीखने आ रहे हैं, जानने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अब मैं आपको कैसे कुछ बता सकता हूं कि आपको ये पढ़कर आना चाहिए। तो हमारी तरफ से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन आपके लिए नहीं है कि आप आने से पहले यह पढ़कर आए, पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी तरफ से जो भी पढ़ना चाहें आप पढ़ते रहें, आपके लिए बिल्कुल उसकी छूट है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो लगातार मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर में भी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रोजाना न्यूज सुने, कम से कम रेडियो न्यूज तो सुने, और बेहतर होगा कि उसी के साथ ही आप दूरदर्शन के न्यूज को भी शामिल कर लें और साथ ही साथ अखबार भी आप पढ़ें। ये काम आप रूटीन तौर पर डेली करते रहें और शेष जो भी आपको ठीक लगता है, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं वो सब पढ़ते रहें, जो भी आपकी इच्छा हो रही है आप वह सब पढ़ें। हम लोगों की तरफ से इसके लिए कोई अतिरिक्त निर्देश नहीं है। हाँ, जब आपके 15 दिन की क्लासेस पूरी हो जाएंगी तब डेफिनेटली आपको कुछ विशेष निर्देश दिए जाएंगे कि अब इस सिलसिले को आपको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। दोस्तों, अब मैं आता हूं कल की कुछ मुख्य घटनाओं पर और फिर हम मुख्य विषय पर आएंगे। अखबारों में आपने पढ़ा और न्यूज में भी आपने सुना कि सरकार ने अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ट्रस्ट का गठन कर दिया है। आपको मालूम है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का अंत सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन से हुआ था, जो विवाद एक तरह से देश में बहुत तनाव का कारण बना हुआ था, बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से उसका समाधान हो गया और सबसे बड़ी बात यह थी कि सभी ने इसे बहुत खुले मन से स्वीकार भी किया, और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां मंदिर बनाया, अगर बनाया जाना है तो बकायदे एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाए, और उस ट्रस्ट का गठन हो गया है, और उस ट्रस्ट के गठन के साथ ही उसे 67 एकड़ भूमि दे दी गई है जहां राम का मंदिर बनना है। तो ये जो ट्रस्ट है यही निर्णय लेगा कि मंदिर कैसा बनेगा, कि क्या होगा, सारे निर्णय इस ट्रस्ट लेगी। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक और भी डिसीजन था कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उन्हें 5 एकड़ जमीन दी जाए। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन भी सरकार ने दे दी है। स्पेशली जो स्टूडेंट यूपी के हैं उन्हें थोड़ा सा एक शब्द याद रखना चाहिए, धन्नीपुर। यह धन्नीपुर गाँव है, और यहाँ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दी गई है और इसका जो तहसील है वो है सुहावत। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्री में आपके जो UPSC का एग्ज़ाम होता है, हो सकता है कि उसमें पूछ लिया जाए, या फिर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तब हो सकता है कि ये प्रश्न आ जाए। दोस्तों एक आंकड़े, एक दो मैं आपको आंकड़े बताने जा रहा हूं। मैं अब आपको थोड़े से महत्वपूर्ण आंकड़ों की भी जानकारी दिया करूंगा और खासकर ये जो आंकड़े हैं ये दो तथ्यों से संबंधित होंगे, एक तो हमारे जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई है और दूसरा हमारा जो अभी बजट प्रस्तुत किया गया है। देखिए होता यह है कि जैसे बजट, अब बजट एक तरह से आंकड़ों का मकर जाल जैसा ही है जहां दुनिया भर के आंकड़े होते हैं। जब आप उन आंकड़ों को एक साथ पढ़ने की या रटने की कोशिश करते हैं तो उस समय तो आपको लगता है कि आंकड़े आपके समझ में आ गए हैं, आपके दिमाग में हैं भी, लेकिन आगे चल करके वो सब गड्ढम गड्ढ होने लगते हैं। तो यहाँ दो बातों का आपको खासकर ध्यान रखना होगा। पहला तो यह कि सभी आंकड़े आपके काम के नहीं होते। मैं काम के नहीं होते का मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वे आपको जानने चाहिए। तो कौन से आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे, मेरी कोशिश होगी कि मैं धीरे धीरे आप तक उन्हें पहुंचाऊं। दूसरी बात यह कि मैंने कहा धीरे धीरे आप तक पहुंचाऊं, धीरे धीरे इसलिए कि अगर मैं संदर्भ के साथ वे आंकड़े आपको बताता रहूंगा तो डेफिनेटली वे आंकड़े आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे तरीके से मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो दुनिया भर के आंकड़ों के बीच में ये भी आंकड़े मौजूद हैं और पता लगा कि जब जरूरत पड़ रही है तो ये आंकड़े आपकी पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 आंकड़े बता रहा हूं जो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। इनमें पहला यह एक आंकड़ा है फ्रेंड्स कि अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020 से और लास्ट मार्च 2021 तक वो चलेगा। वित्तीय वर्ष के बारे में आप जानते हैं। इस दौरान जो GST कलेक्शन का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, सरकार को उम्मीद है कि वह 11.7 लाख करोड़ GST कलेक्शन कर लेगी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, 11.7 लाख करोड़, यानी कि हर महीने लगभग 1 लाख करोड़। देखिए आंकड़ों को अपने दिमाग में बनाए रखने का एक ये भी तरीका होता है ना, 12 लाख करोड़ होता तो हर महीने 1 लाख करोड़ हो जाता, लेकिन यहां 12 लाख करोड़ नहीं है, कम है, 11.7 लाख करोड़, यानी कि मोटे तौर पर ये आपको आंकड़ा मालूम होना चाहिए। दूसरी बात कि सरकार ने इस अपने बजट में इस बात की घोषणा की है कि जो हमारे टैक्सेस विवाद में पड़े रहते हैं, है ना, किसी के ऊपर टैक्स सरकार ने लगा दिया है लेकिन उसको लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो कंपनी फिर कोर्ट में चली गई है, तो मामला विवाद में पड़ा हुआ है और सरकार ने कहा है कि कोर्ट के बाहर भी विवाद का समाधान किया जाना चाहिए, है ना, इस पर भी सरकार का बहुत जोर है। और इस विवाद के अंतर्गत 9 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। आप देखिए कि विवाद 9 लाख करोड़ रुपए, ये भी आंकड़ा एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है क्योंकि सरकार ने एक अलग से इसके समाधान के लिए मेंशन किया है। तो ये 2 आंकड़े मुझे लगता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण अभी हो सकते हैं। फ्रेंड्स आज के करंट कंटेंट में आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की जरूरत, इस पर आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है। ये आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था। इसमें आप पाएंगे कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 तथ्यों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है जिसकी चर्चा बकायदे इकोनॉमिक सर्वे में की भी गई थी। हालांकि हम इज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बेहतर स्थिति में होते चले जा रहे हैं, लेकिन 2 चीजें हैं जो हमें अभी बहुत परेशान कर रही हैं। उसमें एक चीज तो है कि हमारा जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो काफी खराब है, उसके बारे में वहां बकायदे चर्चा की गई है कि बहुत ज्यादा समय लग जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय पहुंचने में। और दूसरा यह है कि परमिशन बहुत लेनी पड़ती है, लाइसेंस बहुत लेने पड़ते हैं। जब ज्यादा लाइसेंस लेने पड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें भी ज्यादा समय लगेगा। तो यह हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी नीचे पहुंचा रहा है। तो इसको बेस बना करके ये आर्टिकल लिखा गया था, उसका हिंदी वर्जन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसे प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी तुलना भी की गई है कि इटली में क्या स्थिति है, अमेरिका में क्या स्थिति है, चीन में क्या स्थिति है, दूसरे देशों में। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे तथ्य इस आर्टिकल में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वह है सहकारी बैंकों में सुधार। मैंने इस विषय को क्यों लिया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको मालूम है कि बुधवार को हमारी कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट फिर कुछ डिसीजंस लेती है ना। कैबिनेट के बाद ही फिर आगे चीजें पार्लियामेंट वगैरह में बढ़ती हैं। कुछ डिसीजन तो सीधे सीधे कैबिनेट ले सकती है, लेकिन कुछ बहुत से डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जो पहले कैबिनेट लेती है और फिर वो विधेयक के रूप में पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो अभी हमारी कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है और वह डिसीजन लिया गया है जो सहकारी हमारे बैंक हैं उन सहकारी बैंकों में कैसे सुधार किया जाए, तो बैंकिंग कानून में संशोधन का उसने डिसीजन लिया है कैबिनेट ने। और ये जो बैंकिंग कानून में जो संशोधन का डिसीजन है इसका संबंध सहकारी बैंकों में सुधार करने से है। सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ समय पहले, दो महीने ज्यादा हुए होंगे, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक में जो संकट खड़ा हुआ था उसके बारे में काफी चर्चा हुई थी, है ना। हो ये रहा है कि सहकारी बैंकों में आप पैसा जमा कर देते हैं, कुछ समय के बाद पता लगा कि सहकारी बैंक फेल हो गए हैं, अब जमाकर्ताओं को अपना पैसा मिलना मुश्किल हो रहा है। और सोचिए कि भारत के लोग जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के हैं किस तरह से अपना पेट काट काट करके बैंकों में पैसा जमा करते हैं और पता लगा कि उनका सारा पैसा डूब गया है। इस बार के बजट में आपने एक बात और गौर किया होगा और वो ये है कि सरकार ने अब ये घोषणा की है कि जब बैंकों में आपका पैसा यदि जमा है, तो अभी तक ये था कि अगर वो बैंक डूब भी जाए तो आपका कम से कम 1,00,000 रुपए तो सुरक्षित है। अगर आपका मान लीजिए 10,00,000 रुपए वहां जमा है तो कोई बात नहीं, 1,00,000 रुपए, आप यूं कह लीजिए कि 1,00,000 रुपए का बीमा है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसे बढ़ा करके अब सरकार ने 5,00,000 रुपए कर दिया है, तो इसको इसकी बड़ी सराहना की जा रही है, देश इसका स्वागत कर रहा है कि कम से कम लोगों को कुछ तो राहत मिलेगी। उनको लगेगा कि भैया चलो हमने यहाँ बैंक में पैसा जमा किया है तो 5,00,000 रुपए तो हमारे सुरक्षित है। हालांकि देखिए सीधी सी बात है कि भैया हमने पैसा जमा किया है तो हमारा तो पूरा धन सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन चलिए वो एक अलग मुद्दा है। तो ये माना जा रहा है कि एक तो महाराष्ट्र बैंक, ये जो पंजाब और महाराष्ट्र बैंक ये फेल हुआ उसके संदर्भ में, और फिर सरकार ने इधर 5,00,000 बढ़ा करके भी बैंकों के प्रति कम से कम लोगों के विश्वास को थोड़ा सा बनाए रखने की कोशिश की है। तो सहकारी बैंक केवल अभी की बात नहीं है, सच पूछे तो शुरू से ही विवाद की स्थिति में रहे हैं। उसको देखते हुए सरकार ने अब 3-4 जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही है, उसे थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लें। पहला तो यह है कि जो हमारा रिजर्व बैंक है उसके जो दिशा निर्देश हैं वो सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे। तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, तो भाई सहकारी बैंकों पर फिर किसके दिशा निर्देश लागू होते थे, ये तो बैंक है और रिजर्व बैंक हमारा बैंकों का बैंक है, तो रिजर्व क्या ही रिजर्व बैंक के नियमों से बाहर थे। यहां मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा। पहली बात ये कि जो सहकारी बैंक होते हैं इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो इनका जो नियमन होता है वो राज्य सरकार के द्वारा और थोड़ा सा आरबीआई के द्वारा भी, थोड़ा सा, लेकिन अब आरबीआई के नियमन को बढ़ाया जाएगा। किस तरीके से बढ़ाया जाएगा उसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहला ये है कि अब जो रिजर्व बैंक के जो दिशा निर्देश होंगे वो सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जो प्रशासनिक मामले हैं उन प्रशासनिक मामलों को अभी भी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ही देखेगी। जो वित्तीय संबंधी मामले हैं उन पर अब आरबीआई के दिशा निर्देश लागू होंगे। अब इसके तहत क्या क्या है कि सहकारी बैंकों में जो सीईओ की जो नियुक्ति होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, उसके लिए बकायदे योग्यता के मापदंड निर्धारित किए जाएंगे और नियुक्ति के बाद आरबीआई से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जिस तरह से कमर्शियल बैंक परमिशन लेते हैं। देखिए कमर्शियल बैंक तो प्राइवेट बैंक होते हैं, वो बकायदे जब नियुक्ति कर लेते हैं तो आरबीआई की अनुमति लेते हैं कि भाई हमने इसको नियुक्त किया है, क्या आप ओके करते हैं। तो सहकारी बैंकों को भी ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि सहकारी बैंकों के फेल होने में या उनकी अक्षमता में एक बहुत बड़ा रोल इस बात का है कि वहां प्रोफेशनल लोग नहीं है। और सच पूछे तो हालांकि ये कोऑपरेटिव किस थ्योरी पर बनाई गई थी, लेकिन ये भी एक सरकारी विभाग की तरह काम करने लगे, बहुत आलोचना होती इस बात को लेकर के। तो सहकारी विभाग था, उसे आपने सरकारी विभाग बना दिया है, तो सरकारी तंत्र की तरह से वो काम कर रहा है, किसी को भी आप सीईओ बना दे रहे हैं, और राजनीति तो बहुत ही जबरदस्त रूप से फिर वहां काम करने लगती है, क्योंकि बैंक है, अब आप किसको बनाएंगे, फिर वहां राजनेता आने लगते हैं, तो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होने लगता है। तो नहीं, कहा गया कि नहीं, सीओ की जो नियुक्ति होगी उसके बकायदे योग्यता होंगे, उन मापदंडों के आधार पर उसकी नियुक्ति होगी और फिर बकायदे आपको आरबीआई से उसकी परमिशन भी लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी कि ये ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सहकारी बैंकों का भी जब ऑडिट होगा तो वह बकायदे आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। ऑडिट के बारे में आप जानते हैं, उनका लेखा जोखा, जो आर्थिक लेखा जोखा है, परीक्षण है, वो किया जाएगा और वो बकायदे आरबीआई के जो दिशा निर्देश है उसी के तहत किया जाएगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो नेक्स्ट है और इसे आप लास्ट भी कह सकते हैं कि जब कोई सहकारी बैंक घाटे में आने लगेगा, घाटे की स्थिति जब उसकी आएगी, तो उस समय आरबीआई को ये अधिकार होगा कि सहकारी बैंक का जो बोर्ड है, बोर्ड होता है ना, और बोर्ड ही सारे निर्णय लेता है, बोर्ड को आप एक तरह से सहकारी बैंक का कैबिनेट कह सकते हैं, तो वो जो बोर्ड है उसने जो डिसीजन लिए हैं उन डिसीजंस को आरबीआई बदल सकती है, उलट सकती है। क्योंकि देखिए, कोई बैंक घाटे में है, कोई बैंक फायदे में है, कितना घाटे में है कितना फायदे में है, इसका आधार क्या है, क्यों कोई बैंक फायदे में होता है कोई बैंक घाटे में होता है? सीधी सी बात है कि बोर्ड के डिसीजंस के आधार पर, अगर बोर्ड के डिसीजन अच्छे हैं तो वो लाभ की स्थिति में होगा। तो अगर लग रहा है कि नहीं ये जो बैंक है ये नुकसान में जा रहा है, तो आरबीआई बकायदे बोर्ड के डिसीजन को उलट सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन करने के बारे में कैबिनेट ने निर्णय लिए हैं और मैं समझता हूं कि सहकारी बैंक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं, यहाँ मैं ये जरूर और ऐड करना चाहूँगा कि इस विषय पर आपको ठीक ठाक तैयारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।